ओम शांति। त्याग और महात्याग ये दो मुरली के विशेष टाइटल हैं और इसका कनेक्शन मम्मा से, लेकिन देखा जाए वास्तव में तो मम्मा इससे भी ऊपर थी। एक बार इसी हॉल में ऊपर 24 जून के आसपास की बात है, जगदीश भाई को बुलाया गया था मम्मा की विशेषता सुनाने को, और उसी में ही निर्मल शांता दादी भी थे और मनोहर दादी भी थे, तो थोड़ा सा निर्मल शांता दादी और जगदीश भाई के बीच बात चली। जगदीश भाई, निर्मल शांता दादी ने बोला कि हमने कभी भी मम्मा को शुरू में भी पुरुषार्थी जीवन में देखा ही नहीं, हम सदा मम्मा को संपन्न देखते थे, बाकी सब में तो देखते थे कोई पुरुषार्थ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, विशेष कर रहा है, पर मम्मा को कभी पुरुषार्थी जीवन में देखा ही नहीं। तो जगदीश भाई कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी आत्मा आती है वो पतित तो जरूर बनती है। तो निर्मल शांता दादी बोली, नहीं हमने तो देखा ही नहीं, तो हम कैसे कहें कि ऐसा कुछ उनके अंदर कोई कमी या कुछ ऐसा रहा हो जो कि कहें कि मम्मा ने उसको छोड़ा हो, उसको दिया हो। तो थोड़ी ऐसी बात चली थी। जगदीश भाई ने भी बोला यहाँ ये हो सकता है कि बहुत जल्दी उसे मम्मा ने कवर कर लिया हो। फिर भी निर्मल शांता दादी ने ही बोला कि नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं ऐसा कि जो उन्होंने कवर किया हो। जैसे ही उनका आना हुआ वैसे ही, और ये बात शुरू की बहुत कम लोग जानते होंगे कि मम्मा का ज्ञान में आना कैसे हुआ। उस समय भी मम्मा का जो जीवन था, जैसे बाबा के लिए कहते हैं, बाबा के जो संस्कार थे अज्ञान काल के, वो भी देवता ही स्वरूप थे। उनके साथी भी बोलते थे कि देखो बाबा जैसे कि भगवान होना चाहिए था, आपको भगवान बनना चाहिए था या राजा बनना चाहिए था। तो मम्मा के लिए भी एक दादी ने बताया था, उनका नाम तो हमें याद नहीं है, कि मम्मा कभी भी किसी भी पढ़ाई में किसी कॉम्पिटिशन में सेकेंड नंबर मम्मा का आया ही नहीं था, हमेशा फर्स्ट नंबर आती थी। और स्वभाव संस्कार में भी बताते हैं जब उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा था तो भी मम्मा को कोई वैसा दुखी होना, रोना इस तरीके का भी नहीं था। तो हमको जब ये मिला कि त्याग, तो बड़ा ढूंढना पड़ा कि क्या त्याग किया मम्मा ने। सब कुछ तो संपन्न थे, क्योंकि कोई का अगर देखा हुआ तो पता चलता ये व्यक्ति पहले ऐसा था और इसके बाद इसने ऐसा त्याग किया। तो त्याग में शुरू में जैसे बाबा ने बोला, संबंध, पुरानी दुनिया का त्याग और इस नई दुनिया को स्वीकार कर लेना, पुराने संबंध का त्याग, पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग। मम्मा के बाबा के संस्कार ही इतने रॉयल थे कि लगता ही नहीं था कोई अवगुण जैसा कुछ है। लेकिन अगर मम्मा के कहे कि संबंध के, तो उनका तो लौकिक में देखे तो एक रोचा माता थी और दो बहनें थी। बड़ी बहन का नाम था पार्वती, छोटी बहन का नाम था गोपी। पार्वती बहन जो थी वो तो शादीशुदा थी, उनका तो ज्यादा हमें नहीं पता कि ज्ञान में आए थे पर क्या आगे हुआ। लेकिन गोपी बहन का बताते हैं कि 3 साल वो ट्रांस में थी। एक फोटो भी देखा होगा जिसमें वो सर्कल बना है और वो रास में गई है और मम्मा उसे दृष्टि दे रही है, वो गोपी बहन का ही है फोटो। 3 साल के बाद उन्हें टाइफाइड हो गया और शरीर छोड़ा, और वो बताते सिंध की ऐसी पहली घटना थी जहां पे महिलाएं शमशान में गई थी। तो ये भी एक 17-18 साल की कन्या जो कि अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर रही है, यहाँ तो उस जमाने में तो कितना, आज के संबंध संपर्क जो है बहुत दुख देने वाले हैं। आज कोई मरता भी है तो अंदर से बहुत खुशी होती, चलो अच्छा हो गया, तुरंत होता प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, किसको मिलेगी। लेकिन उस जमाने में कहते कई बार बाबा की मुरली में आता है कोई ने शरीर छोड़ा तो क्या होता है, 2-2 साल 3-3 साल तक रोते थे। और जब ब्रजमोहन भाई आए थे उन्होंने बताया कि बाबा मम्मा के जो संबंध वाले थे, कई समय उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि इसमें इनका इनसे संबंध है, इतने न्यारे रहते थे। क्योंकि रोचा माता भी मम्मा को क्या बोलती थी, मम्मा बोलती थी, और मम्मा भी रोचा माता को रोचा माता कहती थी जैसे सबको बोलते हैं। तो मतलब कितना वो संबंध बदल गए उस वहां। एक होता है कि हम अपने घर से लौकिक संबंध को छोड़ के मधुबन में आ गए और एक होता उन्हीं के बीच में रह रहे, उनके साथ रह रहे हैं और उनसे अलौकिक संबंध बना लेना, माना पुराना संबंध बिल्कुल विस्मृति हो जाना। यहाँ तक कि रोचा माता ने भी शरीर छोड़ा तो भी कुछ मम्मा को फीलिंग नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने भी बताते हैं कि जब ये उनकी युगल ने शरीर छोड़ा तो भी कोई फर्क नहीं हुआ, कोई रोना धोना नहीं, जबकि उन्होंने भी 16 जून को 61 में वो यशोदा माता ने शरीर छोड़ा। तो कैसे त्याग माना संबंध, और ये भी डिपेंड करता है कि वो त्याग हमने कितना टाइम में किया, इसके अनुसार भी नंबर आगे पीछे हो जाता है। लेकिन जैसे पहले त्याग में बाबा ने बोला, त्याग तो किया है पर संकल्प से किया है। एक है त्याग संकल्प से करना, दूसरा है कर्म में भी वो त्याग आ जाए। सोच लिया, संकल्प कर लिया कि ऐसा करना है, कुछ दिन चला पर वो संपूर्ण रीति नहीं होता, इसीलिए वो सिद्धि स्वरूप आत्मा नहीं बन सकती। फिर मम्मा की एक चीज और ध्यान में आई हमें कि संबंध से ही कनेक्शन है। जैसे कि शुरू में ही बता दिया था बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा भविष्य में नारायण बनेंगे, फर्स्ट महाराजन, और मम्मा जो है महारानी बनेगी स्वर्ग की फर्स्ट। और कितनी अद्भुत बात है कि वो दोनों इस जन्म में बाप और बेटी और अगले जन्म में युगल। तो इस संबंध को भी मम्मा बाबा ने कितना एक्यूरेट निभाया। अगर यहां अगर किसी को पता चल जाए ये भाई या ये बहन मेरे पूर्व जन्म में ये था या आने वाले जन्म में हम ये बनेंगे, तो क्या होगा, वो संबंध कहीं ना कहीं फीलिंग में आना शुरू हो जाएगा इसी जन्म में ही। लेकिन मम्मा का और बाबा का ऐसा कनेक्शन था कि जो ये पता होते हुए भी कि ये अगले जन्म में हमारी युगल होगा, ये हमारे जन्म में ये होगा, फिर भी कोई भी रिंचक मात्र उस जन्म का संस्कार इस जन्म में टच नहीं कर पाया। कितनी पवित्रता, कितनी शक्ति रही होगी उस संकल्प में, उस कर्म में, क्योंकि वो जो त्याग था वो केवल संकल्प में भी नहीं था, कर्म में भी दिख रहा था। इसके अलावा मम्मा के लिए और अगर देखें तो जैसे बाबा ने बोला कि त्याग करते हैं, सदा करते हैं महात्याग में, तो उनको क्या होता है, मतलब पुरानी दुनिया का भी और स्वभाव संस्कार का भी, संकल्प का भी। तो एक मुरली में ही, कराची की मुरली में बाबा ने बोला था कि मम्मा जो है वो सदैव शुद्ध संकल्प की जंजीरों में बंधी रहती है। यहां तक कि एक बार बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी बोला था कि यज्ञ माता जो है वो हर चीज देखते हुए भी, जानते हुए भी, हर एक आत्मा के लिए सदैव शुभ संकल्प रखती है। और अपने को क्या होता है, पूछना पड़ता है कि ये आत्मा ऐसा करती है तो उसके प्रति शुभ संकल्प रख पाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं त्याग, और जो त्याग संपूर्ण रीति त्याग होता है तो उसका फल भी फिर संपूर्ण प्राप्त होता है, नहीं तो फिर वो आधा त्याग तो फिर उसमें प्राप्ति में भी फिर वो अंतर पड़ जाता है। इसके साथ साथ मम्मा का अगर देखते हैं स्वभाव संस्कार, तो स्वभाव संस्कार में बताते हैं कि मम्मा का जो एक बार कोई भी चीज मम्मा ने पक्की कर ली तो वो दोबारा कभी होती नहीं थी, कि ऐसा नहीं कि जैसे कि वो बार 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 सीखना पड़े, वो एक बार किया और वो दृढ़ता आ गई। जैसे कि कराची की एक बात याद आती, इस पे रमेश भाई जी ने बहुत अच्छा सुनाया था कि कैसे मम्मा के अंदर वो दृढ़ता थी। अगर एक चीज को जो ठान लिया करने को या जो छोड़ना है तो वो संपूर्ण रीति होता था। बताते कराची में जब बाबा रहते थे तो बाबा क्लिफ्टन पे रहते थे और मम्मा कुंज भवन में रहती थी। तो एक बार मम्मा को बहुत बाबा की स्मृति अधिक थी, और होता क्या था कि जैसे ही ये टाइम होता था बाबा के पास जाने का तो सारे के सारे भाग जाते थे, किसी का कोई काम है सब छोड़ा और बाबा के पास भाग गए। लेकिन मम्मा फिर नहीं जाती थी, क्योंकि मम्मा ये जानती थी ये यज्ञ की जिम्मेदारी है, अगर हम भी छोड़ के चले जाएंगे तो फिर कौन संभालेगा। तो रात में बताते हैं कि मम्मा को इतने आंसू आए कि उनका तकिए का जो कवर है वो भी भीग गया। जब सुबह ये बात बाबा को पता चली तो बाबा खुद मम्मा से मिलने आए, मम्मा को बहुत प्यार किया। फिर बाद में बाबा ने बोला, मम्मा आपको एक वायदा करना है कि आज के बाद कभी भी आंख में आंसू आएंगे प्यार के, लेकिन उनको गिरने नहीं देना है। और जब रमेश भाई बताते हैं कि ऐसे दो घटनाएं हुई थी, एक बार बेंगलोर से मम्मा पुणे आई थी और कानपुर से मम्मा बॉम्बे गई थी, तो रमेश भाई ने बॉम्बे का बताया था कि मम्मा जब सेवा करके आई थी बॉम्बे कानपुर से बॉम्बे, तो कानपुर वालों ने मम्मा को एक पत्र लिखा था, बहुत ऐसा पत्र था कि उसको जब क्लास में संगठन में मुरली क्लास के बाद पढ़ा जाता है, और जब पढ़ा जा रहा था तो सबकी आंख में आंसू आ गए थे। रमेश भाई ने कहा हमारी आंख में भी आंसू आ गए थे, पर हम देख रहे थे मम्मा की आंख से आंसू गिर नहीं रहा था। तो रमेश भाई ने वो लेटर लिया और उसको फिर से दोबारा पढ़ना शुरू किया कि शायद अब मम्मा की आंख से आंसू निकलेगा, लेकिन मम्मा ने जैसे ही वो समझ गया और मम्मा ने रमेश भाई को अपने पास बुलाया और बोला, रमेश भाई ये मेरा बाबा से किया हुआ वादा है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो इन आंखों से आंसू नीचे नहीं गिरेंगे। तो देखो कितनी दृढ़ता, एक बार जो वादा कर लिया उसको कितना हिलाया गया, उस पे कितने पक्के रहे, सोचो कितनी शक्ति होगी उस त्याग में कि जो कमी थी कमजोरी कहो या जो भी, वो कितनी जल्दी परिवर्तन हो गया। और हम लोग को अगर देखे तो ना जाने कितने सालों में उसको उसकी गिनती समाप्त हो गई है कि कितनी बार हम उसे करते हैं फिर गिरते हैं, करते हैं फिर गिरते हैं, वो भी संपूर्ण रीति नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है अगर वहां पे पक्के हैं, नींव अगर पक्की है तो फिर आगे इमारत तैयार हो जाएगी, लेकिन नींव ही कमजोर है तो थोड़ा बिल्डिंग खड़ी होगी फिर गिरेगी, फिर खड़ी करेंगे फिर गिरेगी। तो मम्मा का जीवन कितना त्याग का था, यहां तक कि महिमा के लिए भी कहते हैं तो मम्मा की मुरली में अगर देखा जाए, एक मम्मा की ही ऐसी वाणी है जिसको मुरली कहा जाता है, बाकी सबके क्लास कहे जाते हैं, अनुभव कहा जाता है, लेकिन मम्मा की मुरली को वाणी को मुरली कहते हैं, जिसमें अगर देखें तो मम्मा ने कभी भी उस मुरली में कभी भी अपना कुछ ऐड नहीं किया, यहां तक कि अपना कोई अनुभव नहीं सुनाया कि एक बार मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ या मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, बाकी सब सुनाते तो कहीं ना कहीं उनका अपना जीवन या कोई एक विशेषता कहीं ना किसी बात को लेकर आ जाती है, पर मम्मा की मुरली चलती है ऐसा लगता है जैसे बाबा ही सुना रहे हैं, बाप ने ये फरमान किया है, बाप ऐसा कहते हैं। तो उसमें कितनी निरहंकारिता थी, कितना अपने को गुप्त रखने का था, यहां तक कि बताते मम्मा जब ऐसे आपस में तो मिलेगी लेकिन जब किसी से पर्सनल मिलना होता है तो जितनी लेन देन करनी है बात की उतना ही करेगी, अपने ज्यादा एक्स्ट्रा कहें बोलना उस पर भी कंट्रोल, कि एक्स्ट्रा भी इतना नहीं बोलना कि वो कहीं ना कहीं ज्यादा में आ जाए। दूसरी बात देखें तो ये तो संस्कार इतनी जल्दी मम्मा ने परिवर्तन कर लिया, महिमा की अगर बात करें तो इतनी मम्मा की महिमा होती थी कि सबसे बड़ी बात है कि जब संदली पे मम्मा बैठती थी बाबा भी बैठते थे, खुद ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा उसकी इतनी महिमा कर रहे हैं, यहां अगर किसी ने हमारी किसी की महिमा कर दी तो हमें कितना याद रहता है, एक बार हमको इसने ये बोला था वो बोला था तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन मम्मा को कितनी बार बाबा ने बोला कि ऐसे। तो एक बार एक भाई ने पूछा कि मम्मा से कि मम्मा जब बाबा आपके बारे में ऐसा बोलते हैं तो आपको तो बहुत खुशी होती होगी, तो आपको अच्छा लगता होगा, तो कहा मम्मा ने खुशी होती है परंतु वो वाली खुशी नहीं होती है, माना एक न्यारापन उसमें, मम्मा ने कहा ये प्रभु प्रसाद है, माना जो भी गुण मिल रहा है मुझे या जो भी गुण दिख रहा है ये प्रभु प्रसाद है, प्रभु प्रसाद ये मतलब मेरी नहीं है। दूसरी एक चीज बहुत अच्छी लगती थी हमको मम्मा के भोजन, भोजन हम समझते हैं जितना अनुभव में देखा है मम्मा के, कभी भी मम्मा ने भोजन को भोजन समझ के किया ही नहीं, वो हमेशा कहती थी प्रसाद, क्योंकि जब हम प्रसाद लेते हैं तो उसमें ना तो टेस्ट देखते हैं ना उसकी क्वांटिटी देखते हैं, जब बाबा की अगर टोली मिलती तो हम देखते हैं उसको इतना सा इतनी बिंदी जितना भी तोड़ तोड़ के सब खाते हैं और उसी में क्या होता है तृप्त हो जाते हैं, पर भोजन क्या होता है अगर हमें थोड़ा कम मिले तो, कि हमारे पास कम आया हमारे पास कम आया। तो मम्मा ने अपने भोजन को भी क्या कर दिया, प्रसाद बना दिया, और वो प्रसाद जो है स्वीकार करके मम्मा ने कितनी आगे चली गई कि कितना लोग उसे याद करते हैं। कहीं कहीं पे जब मम्मा से पूछा जाता था, पुणे बेंगलोर से मम्मा सेवा करके आई थी और जानकी दादी ने पूछा कि मम्मा सेवा कैसी रही, तो मम्मा ने बोला ठीक थी सेवा, अच्छी थी, आगे कुछ वर्णन नहीं किया। लेकिन जो भाई मम्मा के साथ गया हुआ था उसने जब बताया तो दादी को बहुत आश्चर्य लगा कि इतनी सेवा हुई और मम्मा ने बोला ठीक थी अच्छी थी। तो अपनी महिमा को भी मम्मा ने स्वीकार नहीं किया, तो इसीलिए देखो बाबा ने उसकी कितनी भक्ति में महिमा करी, आज तक लोग उसे याद करते हैं। ये दो सोल ऐसी हैं, ब्रह्मा बाबा और जगत अम्बा, जो कि इसका संगम पर भी इतनी महिमा होती है, इनकी इनके राज्य में भी महिमा होती रहेगी, द्वापर युग से भक्त भी इनकी महिमा कर रहे हैं। तो कहते ना, त्याग जैसा त्याग होता है वैसा भाग्य। इसके बाद जैसा मुरली में बोला कि शक्ति स्वरूप, मतलब कहीं ना कहीं उसने जो महात्याग तो कर लेते हैं लेकिन उस त्याग का भी त्याग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अलबेलापन आलस थोड़ा सा आ जाता है। पर मम्मा के लिए कहते हैं कि मम्मा में अलबेलापन और आलस तो कहीं भी देखने को नहीं मिला, यहां तक कि मम्मा ने अपने समय का भी त्याग किया। जब भी मम्मा से पूछा गया, मम्मा आप इतनी सेवा करते रहते हो, आप अपने लिए समय कैसे निकालते हो, तो एक मम्मा ने उत्तर दिया, बोला कि जो दिन का समय है मेरा वो सब सेवा अर्थ है, और जो रात्रि का समय है वो मेरा पुरुषार्थ का समय है। यहां तक कि पुरानी बहनें ये भी बताती कि मम्मा ने हमको, कई लोगों ने बोला कि बोला था कि आपको कभी भी जरूरत हो तो बिना पूछे बिना बताए किसी भी समय आप मम्मा से डायरेक्ट आ सकते हो मिलने। तो सोचो वो रात का भी समय दे देना सेवार्थ, तो कितना। जैसे कि दिल्ली में मम्मा थी, तो दिल्ली में जो दादी थे उन्होंने बोल, एक दिन मम्मा जल्दी उठ गई तो मम्मा ने बोला आज एक भक्त मुझसे मिलने आने वाला है। तो कैसे अपना सेवा में ही जो है समय दे करके भी उसे सफल किया, तो अपने समय का भी त्याग। और अगर शरीर के अनुसार देखें मम्मा का, तो वो तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ जाता है। जब कानपुर में मम्मा थे और उस समय मम्मा को थोड़ा दर्द हुआ था सीने में, तो जमुना दादी ने डॉक्टर को बोला दिखाने को, डॉक्टर ने बोला कि कोई गांठ लगती है और ये बड़ी लग रही है, इसके लिए मम्मा को बॉम्बे भेजो। तो जमुना दादी ने यहाँ बाबा को फोन किया और बाबा को ऐसा सा बताया कि ऐसी ऐसी गांठ है। तो उस समय विशेष मम्मा को तिलक नगर या शायद गोविंद नगर का सेंटर का उद्घाटन करना था, कोई नया युगल था जिसने सेवार्थ दिया था, और बहुत भावना वाला था। उसकी ईंट भी बाबा ने रखी थी, बाबा को बोला था कि बाबा आप ईंट रखो, तो बाबा ने बोला ये सब तुम्हारा काम है, तुम लोगों ने मुझे भक्ति मार्ग में भी बड़ा तंग किया और यहाँ पे भी ईंट वीट रखवा रहे हो। तो बाबा ने खैर ईंट भी रखी और उसको बड़ा खुशी भी थी कि बाबा ने ईंट रखी और मम्मा उद्घाटन करेगी। लेकिन बाबा ने बोल दिया कि नहीं, मम्मा को जो है मधुबन भेजो, मधुबन से फिर विश्व किशोर भाऊ ये सब जाएंगे, फिर मम्मा को बॉम्बे भेजेंगे। तो मम्मा ने खुद फोन किया बाबा को कि बाबा नहीं, मम्मा ठीक है, मम्मा को कोई दर्द नहीं है, मम्मा को आप कुछ दिन के लिए छुट्टी दो, नहीं तो बच्चे का दिल टूट जाएगा, बच्चे ने बहुत भावना से स्थान दिया है। तो देखो मम्मा का कितना प्यार कि अपनी देह की तरफ भी कोई वो नहीं। नहीं तो यहाँ होता हम देखते हैं कोई ट्रेन से आएगा, 14 घंटे का 15 घंटे का सफर होगा, तो बोल नहीं अभी एक दिन रेस्ट करेंगे, ऐसा लगता है ट्रेन खींच के लेके आए, वो थक गए इतना। तो कितना वो शरीर को भी लेकर के उसमें वो नहीं देखना। तो खैर उसमें तो उद्घाटन भी हुआ, 7 संदेशियों ने एक साथ भोग लगाया था। फिर वहां से मम्मा, वो तो रमेश भाई ने फिर फोन किया बाबा को कि नहीं बाबा मम्मा को बॉम्बे भेजो पहले, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हैं। तो बाबा ने भी बोला वहां कौन है जो जगह देखेंगे, मम्मा इतनी बड़ी है, जगत अम्बा है। तो बाबा फिर वहां पे भी भेजा, वहां पे भी ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, फिर वहां के बाद भी मम्मा वापस यहाँ आई तो सेवाओं में लग गई। और जब बताते हैं पहले ही दिन था, मम्मा हॉल में हिस्ट्री हॉल में बैठी थी और तुरंत बाबा आए और बाबा ने पूछा मम्मा आपने अपनी ड्यूटी संभाली, तो मम्मा ने बोला हाँ ड्यूटी माना रात का जो कचहरी होती थी। तो सबको बाबा ने बोला देखो बच्चों मम्मा आपकी पास हो गई, तो माना बीमारी भी है इतनी बड़ी उसके बाद भी जो है कैसे अपनी सेवा पर अपने पुरुषार्थ पर। और सबसे मुख्य बात है कि रमेश भाई ने जब बताया कि जब हॉस्पिटल में थे तो मम्मा की जो दिनचर्या थी अमृत वेले उठने की, वो कभी भी मिस नहीं होती थी, और शरीर पर इतना पक्का पकड़ थी जो कि जो डॉक्टर, उसका नाम था डॉक्टर प्रेम करके, जो बोला जब मम्मा का टेस्ट करके आया और बोला कि मैंने 40 साल में एक ये पहला पेशेंट ऐसा देखा है जिसके शक्ल पे बिल्कुल भी कुछ असर नहीं हो रहा है किसी तरीके का, दुख का या घबराहट का, तो कितनी बड़ी वो शक्ति, कितना बड़ा वो शरीर पर कंट्रोल था मम्मा का। यहाँ आने के बाद भी हमने 2-3 पेशेंट देखे हैं ऐसे कैंसर के जिनकी बड़ी दर्दनाक मौत होती है बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे जैसे अभी हम थोड़े दिन पहले पढ़ भी रहे थे, सुना भी था कि इतने लोग थे मधुबन में, पार्टी भी आई हुई थी, कैसे बाबा ने मम्मा को निमित्त बनाकर पूरा अंगूर की टोली देना, नहीं तो यहाँ अगर कोई को सेवा में अगर खड़े कर दो कि ये बांटो तो उसका हाथ दर्द करने लगता है देते देते, एक हाथ फिर दूसरा हाथ। तो उस समय भी कितना अपने शक्ति स्वरूप मम्मा का था शरीर पे, क्योंकि एक यही ऐसा टाइम होता है जहां पे हमारी अवस्था प्रत्यक्ष हो जाती है, शरीर पर हमारा, बीमारी पर या कर्म भोग पर हम कितने विजयी होते हैं। तो ये विशेष रूप से कह सकते हैं कि मम्मा का त्याग का जो संपूर्ण त्याग था उसका जो प्रत्यक्ष फल था कि उस समय, क्योंकि शुरू में मम्मा ने भी बोला था एक बार कराची में कि तुम लोगों को कुछ भी हो जाए, अगर समझो पेट में दर्द भी होता है तो चेहरे पर उसके भाव नहीं आने चाहिए, इतना शरीर से न्यारे रहने का। तो कितना मतलब उस जमाने में भी इतनी कोई मेडिकल की खास सुविधा आज के अनुसार तो नहीं होती थी, फिर भी उस समय मम्मा ने उसको कैसे जीत लिया अपने शक्ति स्वरूप से। अच्छा, ओम शांति। कुछ और? अभी कहाँ है? वैसे तो एक बार वो बताया था बहन जी ने, नहीं वो जयंती बहन ने, कुछ ऐसे ही कि कई लोग शुरू में बोलते थे, बाकी जितने भी अव्यक्त बाबा के मुरली प्लस भोग के संदेश, अगर एक संदेश बहुत अच्छा गुलजार दादी का 96 या 95 का है, बहुत बड़ा संदेश है, उसमें बहुत रमणीक बातें हैं गुलजार दादी की, मम्मा की और बाबा की, कि बाबा को गुलजार दादी ने पूछा बाबा मम्मा को बोलो कि मम्मा बताए कहाँ है, तो बाबा ने बोला मम्मा बता दो इन्हें कहाँ हो, तो मम्मा ने बोला कि क्या करेंगी जान के, तो बाबा ने बोला कि मम्मा जान लेंगी ना तो फिर सारे के सारे वहीं आ जाएंगे, तो फिर बाबा ने बोला अच्छा रहने देते हैं फिर बताएंगे। वैसे तो जितना हमने पढ़ा है संदेश से या बाबा के उसमें तो ऐसे ही बताते, सभी एक ही संगठन में है, 86 के मुरली में भी है जिसमें बाबा ने बोला ये सब आपस में संबंध संपर्क में है, और इनका सेवा का भी जो साधन है एक ज्ञान रूप इमर्ज रूप में नहीं है, लेकिन वो संस्कार यहाँ के आपस में काम करते हैं जिससे इन्हों को लगता है कि ये कोई विशेष कार्य करने के लिए आए हुए हैं, तो एक दूसरे का इनका जो सेवा का साधन है वो इस जन्म के दिव्य जन्म के कार्य हैं। बाकी तो कहाँ है? हाँ, हमारे ही पास है, सेवा में ही है, बस अंतर है। हाँ हाँ, नेपाल के लिए बोला था बहन जी, उसमें बाबा ने संदेश में ये भी बोला कि मम्मा ने बोला था, वो तो उस पे ऑडियो में भी है, मोहिनी बहन का संदेश है, कि मम्मा ने बोला कि जब आप सब प्रत्यक्ष होंगे और जब लास्ट सीन होगा तो हम भी आपके साथ प्रत्यक्ष होंगे, तब सब जान जाएंगे कि हम कहाँ पे हैं और क्या कर रहे थे। हाँ, ये भी कई लोग हमसे भी पूछते हैं कि पहले मम्मा डे भी नहीं होता था, प्रकाशमणि दादी ने शुरू करवाया है, और कई कहते कि जैसे बाबा का यादगार शांति स्तंभ बना है, दादी का बना है, और जितना 18 जनवरी में होता है या 25 अगस्त को होता है उतना मम्मा डे पे क्यों नहीं होता है। तो एक तो ये भी बात है, वो जो समय था वो कोई भी होता उस समय तो वो बहुत, क्योंकि बाबा के रहते तो चित्र लगाना अलाउ ही नहीं था, चित्र लगा लेना या किसी का, बाबा का ही बहुत कम लगता था, वो तो उनके जाने के बाद बाबा के चित्र लगने शुरू हुए। दूसरा कह सकते मम्मा बहुत गुप्त पुरुषार्थी भी थी, इसीलिए बहुत गुप्त रखा। संगम पर जितना मम्मा गुप्त है भक्ति में, उससे ज्यादा वो प्रत्यक्ष है। यहां तक कि बाबा ने एक संदेश में इतना भी बोल दिया था, मम्मा आधे भक्त तेरे हैं और आधे भक्त मेरे हैं। तो ये भी देखने की बात है, स्वयं भगवान के बराबर उसने अपने भक्त बना लिए, उतने भक्ति हो रही है। तो जितना कह सकते मम्मा यहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं है, वहां पे उतनी प्रत्यक्ष है, और वहां पे ब्रह्मा उतना गुप्त है। फिर
उसका भी त्याग
है। क्योंकि हमारा ज्ञान का जो नींव था वो मम्मा ने ही रखा है, और कहते जो शुरू में जो मेन निमित्त बनता है ना, उससे आकर्षण ज्यादा होता है। दोनों ही, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। अगर उनको भी कर लिया, उनको भी कर लिया, एक बराबर है। दोनों को ही करते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों को ही करते हैं, क्योंकि दोनों के ही जीवन आकर्षित है। क्योंकि मदर ने भी फादर को ही फॉलो किया ना। ऐसे रमेश भाई से पूछा था ब्रह्मा बाबा ने, या किसी ने और ने पूछा था, आप ब्रह्मा बाबा को ज्यादा मानते हो मम्मा को? तो उन्हें बोले, हम मम्मा को ज्यादा मानते हैं, मम्मा के लिए ज्यादा है। वो कल कटक वाली बहन ने बोला था ना कि उनसे मिलने के लिए 20 मिनट के लिए आए थे। हाँ, शुरू में ही आए हैं कुछ यहाँ पे मधुबन में, जो वो तो जो संदेश है यज्ञ माता बुक में वो पूरा नहीं है, उसमें भी गुलजार दादी के अलावा संतरी दादी ने भी भोग लगाया था, और बाकी मम्मा कई दिन आती भी थी, उसके अलावा कुछ कुछ शुरू में ही, लेकिन उसी बीच में कुछ कुछ संदेशी के तन में और जगह भी आए थे, उसके बाद इतना नहीं आना। और अभी लास्ट शायद 3-4 साल पहले ओआरसी में गुलजार दादी के तन में आए थे, फिर हमने वो वीडियो मंगाया था ओआरसी से, देखा था, तो उसमें नीलू बहन ने स्टेज पे बोला था कि कल आशा बहन आए थे और गुलजार दादी को बोला कि मम्मा को बोलना बाबा को कि भेजे, और उनको बोला था कि क्लास कराने को नीलू बहन को। तो उस ऑडियो में देखेंगे, वीडियो में, तो उसमें कुछ देर के लिए बस 1 सेकंड में आए, दृष्टि दी और कुछ बोला वोला नहीं और चले गए। फिर वो गुलजार दादी ने खास बोला था कि सब जगह पे ये संदेश भेजना, तो मधुबन में भी सुनाया गया था, तो काफी 3-4 साल पहले की बात है। उसके बाद तो आने का पार्ट नहीं है, अभी बुलाने का पार्ट शुरू है, वो फिर किसी और दिन बता देंगे। नहीं, हमको हमारी सेवा पे भी जाना है। मामा का अनुभव ये था कि ज्ञान में हमको ज्यादा समय नहीं हुआ था, केवल कोर्स हमारा हुआ था, तो जब हम सेंटर पे गए थे तो उसी समय हमको मम्मा से 3 स्वरूप दिखे थे मम्मा के फोटो से। क्योंकि हमने ये ज्ञान जब सुना तो हमको जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि भक्ति में हम बहुत, जैसे कहेंगे कोई मीरा जैसा भक्त कहो या कोई प्रहलाद इस टाइप के, तो ये ज्ञान स्वीकार करना बहुत हमारे लिए मुश्किल था। हमने कहा ऐसे तो कोई भी कल को आके हमको बोल देगा कि इधर भगवान आया उधर भगवान आया, तो हमने कहा हमें बिल्कुल क्लियर होगा तो ही हम वो करेंगे। तो मामा का जो फोटो था वो है भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको सबने चेंज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं उस पे। तो वो फोटो से ही हमको एक तो वो स्वरूप, दूसरा सरस्वती का स्वरूप, और तीसरा स्वरूप था वो जो दुर्गा का होता है, वो स्वरूप कि कैसे ये सरस्वती और वो ही दुर्गा है। क्योंकि 7 डेज के कोर्स में मम्मा का कोई चैप्टर नहीं होता है, ना कोई बताता है कि ये कौन है, वो तो ऐसे फोटो लगा, हम सोचते जैसे ये सब है। तो वो हमको 10-15 दिन, 3 दिन तक तो हम रात में सोए भी नहीं थे, इतना मतलब वो नशा चढ़ा था हमको, 3 दिन तक ना सोना ना खाना, बिल्कुल एकदम कहीं और ही रहते थे। ट्रांस में तो नहीं ऐसे कहेंगे, लेकिन हाँ शुरू शुरू में ज्ञान की समझ नहीं थी इतनी, लेकिन भोग लगाना बहुत अच्छा लगता था। मम्मा की बातें या साकार बाबा की जितनी भी बातें वो सब सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। ज्ञान में इतना शुरू में 2 साल तक तो ज्यादा नहीं कुछ था। जो ज्ञान है वो बीज है और जो हिस्ट्री है वो फल की तरह दिखता है। तो मतलब जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, चाहे मम्मा का चरित्र हो या बाबा का चरित्र हो, वो ज्ञान को उन्होंने अपने कर्म में दिखा दिया है। मम्मा का अगर देखें तो उन्होंने साकार मुरली सुन करके, आज जो भी अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, तो वो सारा तो उन्होंने कर्म में वो अव्यक्त मुरली को लाके दिखा दिया है। वैसे आज के दिन हम ज्यादा बोलते नहीं है, उस समय भी बोलते थे, बाबा बोलते थे कि मम्मा आएगी फिर मुरली चलाएगी, ऐसे बोलते थे। और हाँ हाँ उसमें बोला है, हाँ उसमें बोला है कि जो कि अभी तक जो पाठ चला वो कोई मुरली नहीं थी, वो तो एक संदेशी का पाठ था और ऐसे उसमें जादू, परंतु साकार बाबा मतलब कि कहते थे कि मम्मा के लिए कि मुरली चलाती है मम्मा, मम्मा आएगी तो मुरली मम्मा की जरूर सुनना। क्योंकि कई बहनें जब बाबा अक्सर चक्कर लगाते थे तो बोलते थे कि बच्ची मम्मा मुरली चला रही है और तुम यहाँ बैठी सो रही हो, तो ये भी होता था। और यहाँ तक कि कराची में नहीं पढ़ते नहीं थे वो, स्टडी करने का उनका अपना तरीका होता था एकांत में, बाकी वो ऐसे सुनाते थे। बाबा खुद भी सुनते थे ऊपर कराची में जहां मम्मा टेरेस पे सुनाती थी, और जाल पड़ा होता था और एक सीढ़ी होती थी वो गोल गोल वाली घूमने वाली, उसी पे बाबा बैठ करके मम्मा की मुरली सुनते थे। क्योंकि अगर बाबा अंदर जाएंगे तो फिर मम्मा नहीं बोलेगी। इसी हिस्ट्री हॉल में अप्रैल में एक बार मम्मा मिल रही थी सबसे, और जैसे ही बाबा आए मम्मा चुप हो गई, तो मम्मा को बाबा ने बुलवाने के लिए बोला मम्मा इनसे पूछो कि ये सब ठीक ठाक पहुंच गए। तो मम्मा ने बहुत देर बाद बोला कि आप सब ठीक ठाक पहुंच गए, तो बाबा ने बोला नहीं मम्मा ऐसे नहीं पूछो, इनसे पूछो बच्चों आप सब ठीक ठाक पहुंच गए। तो मम्मा ने बोला आप सब ठीक ठाक पहुंच गए। तो बाबा के सामने मम्मा ने कभी बच्चे बोल करके ऐसे नहीं किया। तो बाबा को बहुत शौक होता था कि मम्मा कैसे बोलती है कैसे चलती है देखने का। आज के दिन हमारा ये प्रोग्राम है कि जल्दी से जल्दी उनके पास जाने का। नहीं मिली ऐसे तो छुट्टी है ही, क्योंकि जब याद बहुत पक्की होती है और शक्तिशाली होती है तो कर्म उस समय कोई वैसा नहीं लगता है, वो कर्म पे भी जीत आ जाती है। और अगर याद अगर कमजोर है तो फिर हम कर्म के प्रभाव में आ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं स्मृति विस्मृति हो जाती है। क्योंकि शक्ति किसमें, अगर कर्म ज्यादा शक्तिशाली है तो वो अपने प्रभाव में खींच लेगा, अगर याद ज्यादा शक्तिशाली है तो कर्म को खींच लेगी। इसीलिए कभी कभी बहुत अगर याद का नशा चढ़ता है तो आप देखो कुछ भी कर रहे होते हैं तो वो भूल जाते हैं, उसकी कम स्मृति रहती है। वैसे तो इतने समय से 24 जून मना रहे हैं, 18 जनवरी भी मना रहे हैं, लेकिन अभी क्या करना है, मनाते ही रहना है या मम्मा किससे खुश होगी उसकी महिमा सुन के, या दादी कैसे खुश होंगी उनके महिमा सुन के। अब कहीं ना कहीं उनके उस कार्य में मददगार बनना, अगर ऐसे सुनते रहेंगे तो फिर भक्त क्वालिटी में आ जाएंगे, क्योंकि भक्त खाली सुनते हैं और मांगते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। जैसे दादी के साथ उनके कार्य में सहयोगी थे, बस दादी का पार्ट आज कार्य बदल गया है, दूसरा हो गया, बड़े में हो गया, बेहद में हो गया है, तो पूछने की बात है कि बाबा और मम्मा या दादी के कार्य में भी हम सहयोगी हैं। ऐसे तो हैं एक रीति से, परंतु जो विशेष कार्य अब वो करने जा रहे हैं, क्या मेरा उसमें कोई रोल है या मेरा कोई पार्ट है, ये एक बड़ा प्रश्न है। वहाँ सत्युग का पार्ट नहीं, ये जो लास्ट का, और वहाँ के पार्ट के लिए क्वालिटी तो अभी भरेंगे ना, भरी रहे। दोनों की याद में आप आइए ना। नहीं नहीं नहीं